नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। संवेदनशील और क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त जाब्ते की तैनाती। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों को युवाओं और समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए आगे आने को कहा। राज्य में आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना में 210 गांवों का चयन। पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित किया जाएगा। और प्रदेश में सर्द हवाओं के असर से ज्यादातर जगह न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से नीचे दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। बारां जिले की अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। इस विधानसभा क्षेत्र में 2,27,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिनके लिए 268 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हमारे बारां संवाददाता ने बताया कि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं।
मतदान दिवस पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। कुल 3,077 पुलिस जवान मतदान हेतु तैनात किए गए हैं। निर्वाचन विभाग द्वारा इस बार मतदान केंद्रों पर काफी नवाचार किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर मतदाता का मोबाइल फोन जमा कराने हेतु जूट के बैग उपलब्ध कराए गए हैं। दिव्यांग जनों के लिए व्हील चेयर व सहायक तथा शिशुओं के लिए पालने की व्यवस्था की गई है। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार, बारां।
इस बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन और जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश तोमर ने क्षेत्र के मतदाताओं से 100% मतदान की अपील की है। मतदाता एपिक के अलावा 12 अन्य फोटो युक्त वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकेंगे। मतदान संपन्न होने के बाद ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच 12 के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पहुंचाया जाएगा, जहां 14 नवम्बर को मतगणना होगी। अंता उपचुनाव में भाजपा से मोरपाल सुमन, कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा के कंवर लाल मीणा ने चुनाव जीता था। एक पुराने आपराधिक मामले में उन्हें दोषी करार दिए जाने पर इस साल मई से उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई। इस कारण अंता में उपचुनाव कराए जा रहे हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि शहरी सहकारी बैंकों को महत्वाकांक्षी युवाओं और समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए आगे आना चाहिए। आज नई दिल्ली में शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सहकारी कुंभ 2025 का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 5 सालों के भीतर 2,00,000 से ज्यादा आबादी वाले प्रत्येक कस्बे में एक शहरी सहकारी बैंक स्थापित करने का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को सहकारिता से जोड़ने और सहकारी क्षेत्र के लिए पेशेवर तैयार करने के उद्देश्य से सरकार ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की है। इस अवसर पर श्री शाह ने अमूल और इफको को अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की विश्व रैंकिंग में शीर्ष 2 स्थान हासिल करने पर बधाई दी।
आज इफको 93,00,000 मैट्रिक टन यूरिया और डीएपी का उत्पादन कर हमारे देश की ग्रीन रेवोल्यूशन का स्तंभ बना है। आज ब्राजील, अमेरिका, ओमान, जॉर्डन और दुनिया के 65 देशों में इफको के नैनो यूरिया और डीएपी जाते हैं।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोहिमा में नागालैंड विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 22वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री बिरला ने उद्घाटन भाषण में कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र अपनी समृद्ध संस्कृति, विविधता और मजबूत लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जाना जाता है। उन्होंने पूर्वोत्तर विधानसभाओं की एकता और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बनाने के लिए उनकी सराहना की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में आज भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर में सचिवालय में हुए कार्यक्रम में मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि वंदे मातरम ने 150 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राष्ट्रवादी चेतना को प्रेरित किया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने इस गीत की ऐतिहासिक महत्ता को जगाने के लिए राष्ट्रीय स्मृति पहल शुरू की है। इस दौरान सचिवालय परिसर में एक स्थान, एक समय, एक गीत थीम पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने की शपथ ली। इसी कड़ी में जयपुर में पशुपालन विभाग, महिला अधिकारिता विभाग और पाली में जलदाय विभाग में राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन हुआ। झुंझुनू में कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉ अरुण गर्ग ने कहा कि हमें ये आजादी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से मिली है, इसीलिए हमारा दायित्व है कि हम सेवा, समर्पण और ईमानदारी की भावना से काम करें।
हमने लोगों से यही आह्वान किया है कि जो हमें आजादी मिली है वो बहुत लोगों के बलिदान से, वीरगति प्राप्त करने के बाद मिली है। अब हमारा दायित्व है कि हम वापस पे बैक करें, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जिस भी पद पे पदस्थापित हैं, उसको बेहतर तरीके से करें, सेवा का भाव मन में रखें, सोसाइटी को, समाज को, राष्ट्र को पुनः लौटाने की भावना के साथ हम काम करेंगे, तो निश्चित रूप से जनताओं की, सरकार की अपेक्षा पे हम और ज्यादा खड़े उतरेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि झुंझुनू की हमारी टीम अच्छी है, हम निरंतर सुधार का और प्रयास करेंगे और एक बेहतर प्रशासन जो जनता के लिए फ्रेंडली हो और सरकार की जो योजना है कल्याणकारी उसको धरती पर उतार सके, उस हिसाब से कार्य करेंगे।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश में आदर्श आयुष्मान ग्राम योजना शुरू की गई है। इसमें प्रदेश के 210 गांवों का चयन किया गया है। पहले चरण में भरतपुर और डीग जिले के 10 गांवों को चुना गया है, जहां लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, रोगों की रोकथाम और गांव-गांव में जड़ी बूटी की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि इसके लिए प्रत्येक गांव को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जा रही है।
भरतपुर के महाराजसर, अखेगढ़, नगला, बीजा, छोकरवाड़ा, कुमा तथा डीग के सिंसिनी, पानोरी, धिलापी, खो, जुरेरा को चयनित किया गया है। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को औषधीय पौधों की पहचान तथा घरेलू नुस्खा के उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। किसानों को भी औषधीय पौधों की खेती के लिए प्रेरित करने के साथ ही गाँव के पारंपरिक चिकित्सकों को भी औषधीय पौधों तथा घरेलू नुस्खों के रूप में उनके उपयोग की पहचान करने के लिए शामिल किया जा रहा है। शिवकुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
पाली में आज पशुपालन और गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने दो नए शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं आम जन तक पहुंचाने के लिए तत्पर है। उन्होंने गलथनी के अणगौर में उप स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का शिलान्यास किया। श्री कुमावत ने तखतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में शहरी आवास योजना के 117 लाभार्थियों को 50,000 रुपए की सहायता राशि चेक वितरित किए। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पाली जिले के सुमेरपुर में बीएलओ द्वारा लापरवाही की शिकायत मिलने पर उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है। पाली जिला कलेक्टर ने 4 अन्य बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उधर श्रीगंगानगर में SIR के कारण चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है। झुंझुनू जिले में पुनरीक्षण के तहत अब तक 23% गणना प्रपत्रों के वितरण का काम पूरा हो गया है। प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा के प्रति जन चेतना और वाहन चालकों की जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भीलवाड़ा जिले में इस सिलसिले में राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी सुरक्षा के लिए अभियान शुरू किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि विशेष रूप से लेन अनुशासन पर जोर दिया जा रहा है।
हमारे जो थाने इन हाईवेज पे पड़ते हैं गुलाबपुरा रायला मांडल मंगरोब हमीरगढ़ इन थानों में लगातार लेन ड्राइविंग को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और जिसमें हम अवेयरनेस भी कर रहे हैं और वायलेशन करने वालों के खिलाफ चालान भी कर रहे हैं। तो मीडिया के माध्यम से मुझे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जो ड्राइवर्स हैं जो यात्री आवागमन करते हैं हमारे हाईवेज पे उनसे आग्रह है कि आप जो लेन ड्राइविंग के नियम है उसकी पालना करें अन्यथा आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंतर्गत किया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने जीवन की रक्षा और दूसरों के जीवन की रक्षा दोनों के लिए इन नियमों की पालना करेंगे।
प्रदेश में पिछले दो वर्षों में विभिन्न योजनाओं के तहत 7,20,000 से ज्यादा श्रमिकों को 804 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी गई है। ये राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे श्रमिकों तक पहुंचाई गई है। राज्य सरकार श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता और दुर्घटना या मौत पर 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दे रही है। और अंत में मौसम। प्रदेश में सर्द हवाओं के असर से न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से नीचे आ गया है। वहीं 10 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग ने कहा है कि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री नीचे चल रहा है। इस बीच आज सीकर के फतेहपुर में सबसे कम 6.8 डिग्री सेल्सियस और नागौर में 9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 20 नवंबर तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के आसार बताए हैं। इस दौरान तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट और हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। संवेदनशील और क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त जाप्ते की तैनाती। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों को युवाओं और समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए आगे आने को कहा। राज्य में आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना में 210 गांवों का चयन। पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित किया जाएगा। और राज्य में सर्द हवाओं के असर से ज्यादातर जगह न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।